हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आयु के मंथन के साथ लुधियाना जाने की खबर सुनने के बाद आरव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने लीगल एडवाइजर करण मेहरा के पास गया और उसे आयु के खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लेने को कहा। करण से मिलने के बाद आरव वापस ऑफिस आया और सबको मीटिंग रूम में बुलाया। वो सब आरव के आने से पहले आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। आरव के आते ही सब बिल्कुल चुप हो गए। अंदर आते ही आरव ने गुस्से से उन सबको घूरा और सख्त आवाज में कहा, हो गई सबकी गॉसिप, अब आगे सुनो। रियान, जो भी अटायर्स तैयार हैं उन्हें शूटिंग लोकेशन पर पहुंचा दो। उन्हें कैसे फिक्स करना है ये तुम्हें पता ही है। कियान, अपनी फोटोग्राफी टीम को लेकर एक घंटे में लोकेशन पर पहुंचो, शूट शुरू होने वाला है। युवानी ने हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या आयुष्का मैम वापस आ गई? आरव ने सख्त लहजे में कहा, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने जन्नत को बोल दिया है, वही हमारी मेन मॉडल है, बाकी का शूट उसके साथ होगा। आरव का फैसला सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसका इस तरह किसी को नौकरी से निकालना कोई नया नहीं था, लेकिन वो आयु के साथ ऐसा करेगा इसका अंदाज़ा उनमें से किसी को नहीं था। कियान ने हैरानी से कहा, लेकिन एके, ऐसा कैसे हो सकता है? 7-8 अटायर्स का शूट आयु ने किया और बाकी का शूट जन्नत करेगी? आरव ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है कि उस मॉडल ने इतने दिनों में सिर्फ 7-8 ड्रेसेस का शूट किया। तुम्हें पता है ना कि ख्वाब 100 ड्रेसेस का कलेक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 7-8 ड्रेसेस का कैटलॉग शूट किसी और के साथ हो गया। जन्नत प्रोफेशनल है, वो सारा शूट 20 दिन में पूरा कर देगी, और जो शूट मिसेस खुराना के साथ हुआ था उसे जन्नत के साथ रीशूट कर लेंगे। आरव के मुंह से मिसेस खुराना सुनकर घुसब उसकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगे। सबने एक साथ हैरानी से कहा, मिसेस खुराना? आरव ने झुंझलाते हुए कहा, मेरा सरनेम खुराना है और वो मेरी वाइफ है, गलती से निकल गया। ये सब छोड़ो और काम पर ध्यान दो। मैंने जन्नत को शूटिंग लोकेशन भेज दिया है, वो वहां पहुंच रही होगी। सुहानी भी वहां आ रही होगी। तुम लोग भी जल्दी से तैयार होकर लोकेशन पर पहुंचो। युवानी ने डरते हुए पूछा, तो क्या आयुष्का मैम सचमुच डिजायर्स में कभी वापस नहीं आएंगी? नहीं, और अगर तुम्हें अपनी आयुष्का मैम इतनी ही याद आ रही हैं तो तुम्हें भी उनके साथ भेज देता हूँ। पता है डिजायर्स उस पर फ्रॉड का केस करने जा रहा है क्योंकि उसने शूट पूरा किए बिना जॉब छोड़ दी। तो क्या अब भी अपनी आयुष्का मैम के पास जाना है? आरव ने भौहें चढ़ाकर कहा। युवानी घबराते हुए जल्दी से बोली, नहीं सर, मैं बस पूछ रही थी। तो मैंने बता दिया, आरव ने सख्ती से जवाब दिया। वो सब जानते थे आयु ने खुद से जॉब नहीं छोड़ी है, ये बस आरव के गुस्से का नतीजा था जो आयु भुगतने वाली थी। लेकिन एके, ये ठीक नहीं है, आयु ने खुद से जॉब नहीं छोड़ी, तुम भी जानते हो कि वो बीमार है, रियान ने उसे समझाने की कोशिश की। जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में होता है, ना कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशन पर। और मुझे क्या करना है क्या नहीं इसकी एडवाइस देने के लिए करण है। तुम लोग जो काम दिए गए हैं वो टाइम पर करो, बस इतना काफी है, आरव ने काफी रूडली जवाब दिया। आरव की बातों ने कन्फर्म कर दिया था उसका गुस्सा इस वजह से था कि आयु मंथन के साथ घूमने चली गई थी। आयु और मंथन की रिलेशनशिप के बारे में अब डिजायर्स में हर कोई जान चुका था। आरव की आयु से शादी होने के बाद आयु का हर कदम आरव की पर्सनल लाइफ से जुड़ गया था। ऐसे में वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि आयु अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाए। अपनी बात खत्म करके आरव वापस अपने केबिन में चला गया। कियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि एके जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे किसी न किसी की जिंदगी में मुसीबत आएगी। पर किसने सोचा था ये मुसीबत आयुष्का मैम पर आएगी? हमें दादी को सब कुछ पता देना चाहिए, सिर्फ वही है जो आरव सर को रोक सकती है, युवानी बोली। सोचना भी मत, अगर गलती से आरव सर ने ये बात सुन ली तो पता है ना क्या होगा, मीशा ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। रियान भी उसकी बात से सहमत था, उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है मीशा सही कह रही है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आरव के बर्ताव से सभी थोड़ा डर गए और चुपचाप अपने अपने काम में लग गए। हालांकि उन सबको ही आयु के लिए बुरा लग रहा था, पर आरव के डर के आगे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। मीटिंग के बाद आरव वापस अपने केबिन में आ गया। शाम की नर्म रोशनी डिजायर्स के ऑफिस में खिड़कियों से छनकर आरव के केबिन में फैल रही थी, लेकिन कमरे का माहौल उसकी ठंडक के उलट गर्म और तनावपूर्ण था। आरव अपनी कुर्सी पर बैठा था, उसका चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था। आरव ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम वापस कैसे नहीं आती आयु, और वैसे भी तुम आओ या ना आओ, अब डिजायर्स को तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दरवाज़ा जोर से खुला और गौरवी जी गुस्से में अंदर दाखिल हुई। डिजायर्स को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम्हें जरूर फर्क पड़ेगा आरव, गौरवी जी ने अंदर आते हुए सख्त लहजे में कहा। आरव ने उनकी ओर देखा और सार्कास्टिकली सिर हिलाकर बोला, ओ तो आपको भी पता चल गया कि मैंने क्या किया है। जितनी जल्दी आप यहाँ पहुंची हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी टीम के किसी मेंबर ने आपको कॉल किया होगा। उन्हें तो अभी अभी पता चला है, वैसे भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे खिलाफ कुछ करे। इसका मतलब करण ने, गौरवी जी ने आरव की बात काटते हुए कहा। हाँ, करण ने बताया है। तुम कर क्या रहे हो आरव, पागल तो नहीं हो गए? बेवजह आयु को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि वो बीमार है। आरव ने झुंझलाते हुए जवाब दिया। बीमार नहीं है दादी, थी, अब तो वो दूसरों को बीमार करने में लगी है। और दादी प्लीज मेरे ऑफिस के मामलों में बिल्कुल दखल ना दें। अगर आपको मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी कंपनी संभाल लीजिए, और अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, मैं आपके घर में कदम भी नहीं रखूंगा। गौरवी जी ने हैरानी और दुख भरे स्वर में कहा। कैसी बातें कर रहा है आरव, तो प्लीज इस बारे में और बात ना करें, आरव ने सख्ती से कहा। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। गौरवी जी ने देखा कि आरव की जिद के आगे उनकी एक ना चल रही थी। वो जिद पर अड़ा था कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। गौरवी जी ने एक नज़र आरव को देखा और बिना कुछ और कहे वहां से निकल गई। वहीं अकेले में बैठे आरव का मन अब और उलझ गया था। वो अपनी कुर्सी पर पीछे झुका, आंखें बंद की और बड़बड़ाया। पता नहीं क्यों सब मुझे समझाने चले आते हैं, कोई उस मॉडल को क्यों नहीं समझाता कि मेरा दिमाग खराब करना बंद करे। पता नहीं वो डिजायर्स में आई ही क्यों थी, और मुझे भी क्या जरूरत थी उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की। न वो डिजायर्स ज्वाइन करती, न ये शादी होती। उसने अपनी मेज पर रखा फोन उठाया और युवानी को कॉल किया। युवानी ने जल्दी से जवाब दिया। सर, पूरी टीम शूटिंग लोकेशन पर चली गई है, आप बताइए आपको क्या चाहिए। आरव ने थके हुए स्वर में कहा। मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, फिर कुछ सोचकर बोला। एक काम करो, साथ में 2-3 पैकेट और मंगवा लो। लेकिन सर, अगर आप इतनी सारी आइसक्रीम एक साथ खाएंगे तो आपका शुगर लेवल हाई हो जाएगा, युवानी ने परेशान स्वर में कहा। जितना बोला है उतना करो, आरव ने सख्ती से कहा। और ये आइसक्रीम मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए है, बहुत शौक चढ़ा है किसी को आइसक्रीम खाने का। आयु और अपनी टीम पर गुस्सा उतारने के लिए अब माहिरा की बारी थी। आरव गुमला नहीं था कैसे माहिरा ने उसकी अटेंशन के लिए जानबूझकर खुद को बीमार किया।
युवानी ने बिना और सवाल किए आरव के लिए एक आइसक्रीम और 4 बड़े पैकेट मंगवाए। शाम के लगभग 8 बज रहे थे और डिजायर्स का ऑफिस बंद होने वाला था। शूटिंग टीम अभी भी लोकेशन पर जुटी हुई थी, क्योंकि आरव का सख्त ऑर्डर था कि शूटिंग 1 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। वहीं आरव आइसक्रीम के पैकेट्स के साथ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही आरव ने देखा कि माहिरा ड्राइंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने आरव को देखा वो तुरंत उठकर उसके पास आई। आरव, तुम कहाँ चले गए थे, माहिरा ने नाराजगी जताए हुए कहा। तुमने कहा था कि तुम मेरी केयर करोगे, लेकिन तुमने तो एक बार कॉल करके भी नहीं पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा और अचानक उसे गले लगाते हुए कहा। डॉक्टर आया था क्या माही, माहिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ बेबी, मुझे पता था कि तुमने ही उसे भेजा था, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसने आरव से अलग होकर उसके गले में हाथ डालते हुए कहा। मुझे यकीन था कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, आरव ने हल्के से खुद को उससे दूर किया और बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। हाँ देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, आ जाओ, सारा तुम ही खत्म करना है, माहिरा ने एक्साइटेड होकर पूछा। लेकिन इसमें है क्या, माहिरा को लगा आज उसका बीमार होना उसके बहुत काम आ रहा था। खुद देख लो, आरव ने ठंडे लहजे में कहा। चलो जल्दी आओ, सब खत्म भी तो करना है, माहिरा ने मुस्कुराकर बैग खोला। लेकिन जैसे ही उसने उसमें आइसक्रीम के पैकेट देखे उसका चेहरा लटक गया। वो तुरंत समझ गई कि आरव को उसकी करतूत का पता चल चुका था। उसकी आंखों में घबराहट उभर आई। आरव, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, माहिरा ने डरते हुए कहा। बट आई डोंट वॉन्ट, आरव ने सिर हिलाकर ठंडे लहजे में कहा। चलो आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं, माहिरा ने हिचकिचाते हुए कहा। आरव, मेरी तबीयत खराब है। अब उसका रीजन बताने की जरूरत नहीं ना, आरव ने भौहें चढ़ाकर कहा। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं हुई, तुमने जानबूझकर की, इस जलन ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया माही, माहिरा ने उसके पास जाने की कोशिश की और बोली। हाँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। आरव का गुस्सा अब और भड़क गया, उसने माहिरा को जोर से दूर धकेल दिया और गुस्से में सारे आइसक्रीम के पैकेट डाइनिंग टेबल से नीचे फेंक दिए। माहिरा उसके गुस्से से घबरा गई, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। ओ रियली माही, आरव ने चिल्लाते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आता कि गलती तुम्हारी है या मेरी जो तुम आज मुझ पर ऐसे हक जमा रही हो, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम इस घर में क्यों हो, माहिरा ने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। आज अगर मैं इस घर में हूँ तो उसकी वजह तुम हो, उस दिन तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी जिंदगी में आ गई, माहिरा की आंखें नम होने लगी। कैसी लड़की हो तुम माही, आरव ने गुस्से में कहा। मेरा एहसान मानने की बजाय मुझे ब्लेम कर रही हो, अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम जानती हो कि तुम आज कहाँ होती, किस हाल में होती, और मेरी सिचुएशन आज कौन सी अच्छी है आरव, माहिरा ने आंखों में आंसू लिए कहा। आरव ने सख्ती से कहा। मैंने उस दिन तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ उम्मीद ना करना, लेकिन तुम्हारी उम्मीदें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, माहिरा ने इमोशनल होकर कहा। क्या अपनी जिंदगी में सेटल होना गलत है, हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी हो, मेरी भी होने वाली थी आरव, मैं भी आज अपने पति के साथ खुश होती अगर तुमने मुझे वहां से नहीं भगाया होता, आरव ने हंसते हुए सर्द निगाहों से कहा। पता नहीं तुम कब अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओगी माही। तुम जिस पति के साथ सेटल होने का सपना देख रही थी वो आज जेल में सड़ रहा है। अगर मैंने तुम्हें वहां से नहीं निकाला होता तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम किस हाल में होती। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी मैंने तुम्हें एक मौका देने की सोची, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी वैम्प वाली हरकतें खत्म ही नहीं होती। तुम जानती हो कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी है। मैंने दिन रात एक करके उसे पूरा किया और तुमने एक बार भी नहीं सोचा उन ड्रेसेस पर नेल पेंट गिराने से पहले। माहिरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम उस आयु के पास होते हो, पर मुझे अच्छा लगता है उसके पास रहना। आरव ने चिल्लाते हुए कहा, आज तुमने जो किया माही, सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हें जहां जाना है, जिसके पास जाना है, जाओ। यहां रहना है तो रहो। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मानी थी तो मैं भी अब तक निभा रहा हूं ना, लेकिन मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। आरव की बातें सुनकर माहिरा को झटका सा लगा। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी बीवी से प्यार हो गया है। वो तुम्हारे स्टेटस की है, दिखने में भी अच्छी है, तो तुम्हारा दिल भी आ गया होगा ना। मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, आरव ने ठंडे लहजे में कहा। किसे झूठ बोल रहे हो आरव, मुझसे या खुद से? माहिरा ने उसे पकड़कर जवाब दिया, सच तुम भी जानते हो। कितना भी प्यार कर लो उसे, लेकिन वो मंथन की है, ये मत भूलना। वो तुमसे नहीं, मंथन से प्यार करती है। आयु सिर्फ और सिर्फ मंथन की है। आरव का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, आरव को खुद एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कह दिया। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर वो बिना कुछ और बोले तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। माहिरा वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल टूट चुका था। आरव के शब्दों ने साफ कर दिया था कि वो आयु से प्यार करने लगा था, और ये बात माहिरा के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। वो धीरे से सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और कमरे में एक भारी खामोशी छा गई।